आयत नंबर 78 से। पीछे अभी तक हमने अब देखिए कि यहूद की जो बातें पढ़ी हैं उसमें से उनके उलमा की एक चीज क्या देखी कि यहरिफून मिन बादी मा कलूहु वहुम यालमून, यानी जानते बूझते करते हैं। अब इसके बाद जो आयत है ना, इसको तर्जमे के अतबार से मुश्किल तरीन आयत कहते हैं, इसलिए आप अपनी उंगली पेंसिलें या पेन जो कुछ भी, बिल्कुल तर्जमा जहां तक मैं पढ़ के रोकूं उसमें कोई लफ्ज़ बोलूं तो आप उसके साथ नोट करिएगा। इंशाल्लाह बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएगी, लेकिन जब बहुत लंबी आयत होती है तो बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वह इज़ा लकुल लज़ीना आमनू, और जब वो मुलाकात करते हैं ईमान वालों से, कालू आमन्ना, वो कहते हैं हम ईमान ले आए। वह इज़ा खला बादुहु मिला बादिन, और जब अकेले होते हैं उनके बास अपने बास की तरफ, कालू तो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम बताते हो उनको। ये पहला मुश्किल लफ्ज़ आया तो इसको साथ ही रोको, मुश्किल नहीं है। उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं हदीस, वही लफ्ज़ है। हद से अकबर, हदस कहते हैं नई चीज़ को, तो बात भी नई चीज़ होती है। तो मुराद के क्या तुम बताते हो इनको, अब कौन किसको बताता है ये बाद में देखेंगे, अभी तर्जमे पे फोकस करें। बिमा फतह अल्लाहु, उस चीज़ को जो खोल दी अल्लाह ने, अलैकुम तुम पर, नुकसान क्या होगा। इधर एक कॉमा लगा ले, यानी यहाँ मैंने जो लफ्ज़ बोला ना नुकसान क्या होगा, तो इसको आप लिख लीजिए, क्या होगा इसका नुकसान। लियुहाजुकुम, ताकि वो झगड़ा करेंगे तुमसे, बिही इसके बारे में, इन द रब्बिकुम, तुम्हारे रब के सामने, अफला ताकिलून, क्या पस तुम अकल नहीं रखते। यहाँ आप देखिए कि इस आयत में ख़ास तौर पे मदीना के मुसलमानों और यहूद का आपस में जो मामला था उसको समझिएगा। पीछे जिक्र कर दिया मैंने, और वो क्या है कि मदीना में यहूद और मुशरिकीन इकट्ठे रहते थे। अब आपस में दोस्तियां थी, ये ऐसी जैसे आप नॉर्वे जब कभी आए होंगे तो आपके एक नेबर में क्रिश्चियन है, दूसरी तरफ हिंदू है, तीसरा घर हो सकता है किसी मुसलमान को, तो साथ रहते बातें होती हैं, बेतकल्फियां हुई, आना जाना लग गया, एक दूसरे की पार्टीज और मुलाकातें शुरू हो गई। इसी असना में उन्होंने अपनी बातें बतानी शुरू कर दी। अब जब बातें उनको बताते थे तो उसमें यहूद ने बताया कि हमारी तो किताबों में लिखा हुआ है एक नबी आने वाला है, इसीलिए तो मदीना में आए हैं। जैसे आप देखिए ना, बाज़ दफ़ा लोगों को अपने दिल का राज दे देते हैं, ना किसी ने पाकिस्तान जाके गुजरात शहर देखना ना कुछ, लगे हम यहाँ बैठ के उनको वहाँ की टूटी सड़कें और गटरों का जिक्र कर देते हैं, समझ आई। अब यहूद ने दोस्तियों में पढ़कर अपने जो भी वहाँ के लोकल मदीना के लोग थे उनको नबी सल्लम के आने की खबरें दे दी हुई थी, जो बात अभी पीछे भी चल रही है। जब नबी सल्लम आए तो अब वो दोस्त जिनके मुँह से ये खुद बातें सुन चुके थे, इन्होंने जाके उनसे कहा कि देखो तुमने तो हमें ये खुद कहा था। अब क्या हुआ, अब ये जो बीच के लोग थे ना, यानी ये आप कह लीजिए कि उलमा यहूद के बाद अब एक दूसरा यहूद का तबका जो आम लोग थे, कॉमन पीपल, ले मैन, अब ये मुसलमानों को चूके बातें बताते थे, और जब उनके पास आते उन्हें कहते तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इनके जो आलिम थे ना वो इनको डांटते थे। ये असल में उनकी उलमा की अपने आम लोगों को डांट है, देखो ये तुम उनको क्यों बताते हो ये सारी बातें कि नबी आएगा, मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये कुछ तो इसका नुकसान क्या होगा, कि लियो हाज युकुम बिही इंदा रब्बिकुम, ये तो तुमसे अल्लाह के सामने झगड़ा करेंगे, अफला ताकिलून, समझे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप घर में कोई बात करते हैं ना बच्चों के सामने, चलो जा रहे हैं, शायद खाने का वक्त हुआ तो खाना वहीं खा लेंगे, अब आप बच्चों को लेके चल पड़े अपनी दोस्त के घर, तो बच्चे वहां जाते क्या कहेंगे, आंटी हम इधर से खाना खा के जाएंगे, क्यों, अम्मी अबू को कह रही थी, तो माँ घर जाके जूता उठाएगी ना, ये बात है। इधर बच्चे अमूमन मासूम होते हैं, वो आम बातें छुपा नहीं सकते, तो जब ये सीधे सादे यहूदी अपने दोस्तों को नबी सल्लम और इस्लाम की बातें बता देते तो इनके बड़े उनको डांटते। अब यहां जरा नोट कीजिएगा, ये बड़ों का अकीदा है कि अल्लाह को कोई नहीं पता चलना, तो अल्लाह तआला अगली आयत में क्या डांट रहे हैं, अवला यालमूना, क्या और नहीं वो जानते, कौन, लिखिए उलमाए यहूद। ये पूरा सबक जब तक आप लफ्ज उलमाए यहूद आम यहूद नहीं करेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, हम एक लफ्ज में नहीं ढक सकते। कहा ये नहीं जानते, यानी इनके पढ़े लिखे अहले किताब का अकीदा अल्लाह के बारे में इतना बिगड़ गया कि इनको ये तक नहीं पता कि अल्लाह यालमु, बेशक अल्लाह ताला जानता है, मा युसिरूना, जो ये छुपाते हैं, व मा युलिनून, और जो ये ऐलान करते हैं, ऐलान का लफ्ज उर्दू में बोलते हैं ना, یعنی جس قوم کے مذہبی رہنما اللہ کو حاضر ناظر نہ جانے، غائب اور حاضر کا جاننے والا نہ جانے، تو بتاؤ پھر قوم کا اور عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اور یاد رکھیے، کتابوں کو بدلنے کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ یہود مثل میں ایک مافیا آ چکا تھا، اور وہ کیا تھا کہ ہم جو کہتے ہیں بس وہ مانو، بڑے بننا چاہتے تھے۔ آج آپ دیکھیے کہ یہ چیز جو کہ ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے سارے حصے میں، وہ یہاں بھی مل رہی ہے۔ خیر، ابھی ہم اس کا نا اینڈ تک اب خلاصہ کریں گے، کیونکہ پھر اس سارے کو جمع کر کے جو چیز آئے گی نا وہ سمجھ آ جائے گی۔ بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا، تم دوسروں کو نہ بتاؤ، یہ روکو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا ومنہم، اب یہاں سے نمبر ٹو لکھیے، مدینہ میں رہتے ہوئے یہود کا دوسرا گروہ، ومنہم، اور ان میں سے کون؟ امیون، امی ہے۔ امیون جو لفظ ہے نا، یہ امی کی جمع ہے، اور امی کہتے ہیں اس شخص کو جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ یعنی ام کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ ماں۔ تو امی کون؟ جس کا سورس آف نالج صرف اس کی ماں ہے، کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کالج میں نہیں گیا۔ مزے کی بات دیکھیے گا، ادھر ہم کس کو ان لیٹرڈ کہتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں اردو میں، کیا بولتے ہیں نہ پڑھنے لکھنے لوگوں کو؟ ان پڑھ۔ جی، ہم جن کو ان پڑھ کہتے ہیں جو اسکول کالج میں نہ جائیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یعلمون الکتاب، وہ لوگ امی ہیں جو الکتاب کا علم نہیں رکھتے۔ آج آپ بتائیے پھر کتنے لوگ امی ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے آپ نے سائنس میں تو آپ امی نہ ہوں، آپ پھر بھی امی ہیں اگر آپ قرآن کے الف با بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے۔ تو پھر دین میں کیا رہ گیا؟ الا امانش، مگر ان کی آرزوئیں ہی رہ گئیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ آخرت کے بارے میں صرف گمان کرتے۔ اب یہاں سے دیکھیں یہود کا اگلا گروہ کیا ہے، امی، قرآن پڑھتے نہیں، دین پہ چند دینداروں کی دھاک بیٹھ گئی، تو یہ اپنی مرضی کا دین لوگوں میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا دین ایک ہی ہے، امانش۔ لفظ امانی کو سمجھیں گے تو سمجھ آ جائے گی، امنیت ان کی جمع، آرزو، تمنا اور خواہش۔ آپ پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ چودھویں پارے کے پہلی آیت میں بھی یہ لفظ آتا ہے، الا امان، یلہیہم العمل، عمل کا بھی لفظ آتا ہے اور امنیہ کا بھی آتا ہے۔ خوش فہمیاں، یعنی جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، دین نہیں سیکھتے، تو ان کا دین کے اور جنت اور جہنم کے بارے میں کیا گمان ہے؟ امان، جھوٹی آرزویں۔ یہود کی آرزویں کیا تھی جھوٹی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان کا یہ ذکر سورہ بقرہ آیت 80 میں ہم پڑھیں گے، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہتے تھے ہم آگ میں کوئی نہیں جائیں گے، گئے تو تھوڑے دن جائیں گے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت 111 میں ہم پڑھیں گے، قالوا لن يدخل الجنہ الا من کان یہودا او نصارا، کہتے تھے جنت میں صرف یا تو یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے، قتل کا معنی یہم۔ پھر اسی طرح سے سورہ بقرہ آیت 94 میں بھی ذکر آئے گا، قل ان کانت لکم دار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اچھا بھی آخرت کے معاملے میں تمہاری اگر اتنی ہی سچی امیدیں ہیں تو پھر موت کی تمنا کرو۔ پھر اسی طرح سے سورۃ مائدہ میں آپ پڑھیں گے، قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه، کہتے تھے ہم اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے ہیں۔ اور سورۃ نساء میں ہم پڑھیں گے کہ تمہاری اور اہل کتاب کی آرزوؤں پہ نہیں ہے جنت کا فیصلہ، بلکہ میں یامل سوئیں یجزا بہ، جو برا عمل کرے گا وہ اس کی جزا دیا جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب سچا دین نہیں رہتا تو پھر صرف آرزوئیں، امانی، امنیہ۔ آج ہمارے بھی گروہ میں ہے کہ مسلمانوں کی بھی امنیہ، فلاں دروازے سے گزر جاؤ تو بہشتی، فلاں رات کی عبادت کر لو تو نیک جنتی، اور یہ کر لو تو وہ کر لو تو یہ کر لو، اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے منافق جب مدینہ کے مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ تمہارا صاحب حق پر ہے، اس کا نام، اس کی خوبیاں ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ تو اس بات پہ ان کے جو ربی ہیں، ان کے بڑے تھے، وہ ان کو ڈانٹتے تھے اور ان کو برا کہتے تھے۔ اس کے برعکس آگے آپ دیکھیے کہ جو لوگ بےچارے دین سے دور ہوتے ہیں نا، وہ اسی میں ہیں۔ اب یہ تو ایک عام لفظ ہے، آج ہمارے کلچر میں ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں، اپنا کفن زمزم میں بھگو لو تاکہ مرنے کے بعد تمہارے اوپر ڈال دیا تو تم بخشے گے، بخشے بخشائے، اور پھولوں کی چادر ڈال دو مردے پہ، اور اتنے حافظ قرآن آپ کے پیچھے رہ گئے تو آپ ہیں۔ یہ سب چیزیں امنی اور امانی میں آتی ہیں، جھوٹی عرض ہے۔ हमें अल्लाह ने नहीं कहा था कि तुम नबी की उम्मती हो तो जन्नत में जरूर जाओगे, चाहे चोरियां करो, सूद खाओ, शराब पियो। नहीं, ये उम्मतियां हैं। आज हम कहते हैं हम उम्मत मोहम्मदिया में से, हम फलां पीर साहब की न्याज देते हैं इसलिए वो हमें बचाएंगे। ये तो एक आम मानी है, इस फ्रेंड पे हम बहस करेंगे इकट्ठी इंशाल्लाह। लेकिन एक और मानी जो बहुत नया मानी होगा आपके लिए, अमानिया ओमनिया मुनन से है तिलावत। यानी इसकी तफसीर जो अरबी में आती है वो क्या है कि इनका कुरान के साथ ताल्लुक सिर्फ तिलावत का रह गया था, कुछ नहीं हुआ आपको सुनकर। आज हमारे कल्चर में क्या है, लोग कुरान को कैसे लेते हैं, कहते हैं इट्स ओके ये तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। आम एक अपने देसी पेरेंट्स को देख लीजिए, 4 साल का होता है तो बच्चे की बिस्मिल्लाह कराते हैं, खाना खिलाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, आज मेरे बच्चे ने कुरान शुरू किया। 10 साल की उम्र में फिर सारे खानदान को जमा करेंगे, क्या है जी के ये आज आमीन है इनकी, और आमीन के साथ ग्रेजुएशन होगी खत्म। कोई बहुत नेक है ना जरा से इससे ज्यादा, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमने अपने बच्चों को हाफिज कराना है, चलो जी खत्म, हिफ्ज बन गया खत्म, हाफिज कुरान का रिश्ता आ गया, समझें कि जन्नत का रिश्ता आ गया। नहीं, देखिए हिफ्ज बहुत अच्छी चीज है, बट क्यों, कुरान मुझे याद हो जाए। कुरान बाज हिस्सा बाज की तफसीर करता है, मैं आप तफसीर कराती हूँ, अगर मैंने हिफ्ज किया हो तो मैं एक आयत पढ़ूँ तो मुझे कुरान की 10 आयतें याद आ जाएंगी, ये फायदा है। मैं रात को तहज्जुद में खड़ी हूँ, मुझे कुरान पढ़े में बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिफ्ज करना ये गोल नहीं है, ये तो गोल तक पहुंचना है। हमारे अमूमन देखिए दीनी स्कूलों का नाम कहते हैं कुरान स्कूल, कुरान अकेडमीज, नहीं कुरान नहीं है वहां, आपको वहां सिखा अगर तजवीद रहे तो तजवीज स्कूल है, हिफ्ज स्कूल है। आज हम मुसलमानों का भी हाल ये, अगर आप देखें ना दो गिरोह हमने भी देखे हैं, नंबर एक युहर्रिफून अल किताब, उनके उलमा ने किताब बदली, आज हमारे भी बदलते हैं। अपने स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट करने के लिए हर आयत का इधर से उधर का नाता बदल बदल देते हैं। दूसरा हमने पढ़ लिया अमानिया, अब सबसे वर्स्ट जो आप कह लीजिए कि तीसरे दर्जे का जुर्म, जिसको जुर्म कहेंगे, दुनिया भी इसको जुर्म कहती है कॉपीराइट्स के नाम पे, जरा उसको देखिएगा आयत 79 से आगे, फवैलु लिल्लज़ीना यक्तुबून, बस तबाही है, वैल है, वैल कहते हैं खराबी को, तबाही बर्बादी, जहन्नुम के एक वादी को वैल कहते हैं जिसमें काफिर को गिराया जाए तो 40 साल तक गिरता ही जाएगा। इसी तरह कहते हैं कि जहन्नुम की वादी वैल है, अगर इसके ऊपर से एक बड़ा पहाड़ डाल दिया जाए तो इसकी तह तक पहुंचने में वो मेल्ट हो जाए। जरा सोचिए वो आग कितनी सख्त होगी जो बड़े बड़े पत्थरों को भुला देगी, तो क्या पता चला कि इन लोगों के लिए वही है। इसका मतलब कि इनका जुर्म सबसे संगीन है, इनको अल्लाह ने खराबियों और तबाहियों के साथ रखा है। क्या है इनका जुर्म, यक्तुबून अल किताब बिअयदीहिम, ये अपने हाथों से किताब को लिखते हैं, यानी इन्होंने किताब के कुरान के कॉपी राइट्स अपने हाथ में रखे हुए हैं। दे आर नॉट चेंजिंग द बुक, दे आर ऑथरिंग द बुक, यानी ये कुरान के मुसन्निफ बने बैठे हैं, ये किताब को अपने हाथों से लिखते हैं। सुम्मा यकुलूना हाज़ा मिन इंदिल्ला, फिर कहते हैं ये तो अल्लाह की तरफ से, यानी खुद लिखे हुए मैन मेड वज़ाइफ और नजरियात को बनाकर कहते हैं ये तो अल्लाह की तरफ से। करते क्यों ऐसा भाई, किसको क्या लगे कि अल्लाह की किताब को अपनी किताब लिखे। लियश्तरू बिही समनन कलीला, इससे दुनिया के फायदे खरीदते हैं। आज भी जो लोग दीन बेच रहे हैं वो करोड़पति हैं। एक नुस्खा आपको चंद दिन पहले पढ़ के सुनाया था कि सस्ते दामों अपने मरहूमीन की कजा उमरियां पढ़वाएं, और आपने टीवी पे ऐसे कई सुने होंगे जो इस्तखारे करते हैं, पैसों की दुआएं मांगते हैं, कोई किसी से दुआ का पूछे पूछे कितने वाली दुआ करानी है, ये है पैसे खरीदना। फवैलुल्लहुम, दोबारा वही अल्लाह का गुस्सा, फिर हलाकत है इनके लिए, मिम्मा कतबत अईदीहिम, जो इन्होंने लिखा अपने हाथों से, फवैलुल्लहुम मिम्मा यक्सिबून, फिर वही है उनके लिए उसकी जो उन्होंने कमाई की। अगर आप देखें पहली वही किन के लिए थी, आयत में देखिएगा, लिल्लजीना यक्तुबून अल किताब बिअईदीहिम, ठीक है, दूसरी वही किसके लिए, मिम्मा कतबत अईदीहिम, और तीसरी किसके लिए, वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, यानी जो करने वाले उससे जो किया और उससे जो कमाया, इन सब के अंदर तबाही है, खराबी है, खराबी है। यानी ये वो गिरोह है जिन्होंने अल्लाह की किताब को अपना घर बना लिया। आज क्या हम मुसलमानों में भी ये है, मैं कहती हूँ सिर्फ गूगल में दो लफ्ज जाके लिखिएगा वज़ाइफ, बस देखेंगे जो वज़ाइफ आपको मिलेंगे, ये कलेमा 200 बार पढ़ लें और इसका पानी घोल कर पी जाएं तो आपके बच्चे फरमाबरदार हो जाएंगे। और आप ये पढ़ के अपने गाड़ी में लटका दें तो गाड़ी हादसों से बच जाएगी, और आप इसको पढ़ के अपने वॉलेट में रख लें तो आपको कभी टिकट नहीं मिलेगा, और हरूफे मुकत्तात लिख के खाने के टेबल पे रख लें तो बरकत बड़ी है, फ्रिज के बाहर रख लें तो खाना नहीं गलेगा नहीं सड़ेगा। आज लोगों ने क्या दीन को अपने घर की चीज़ नहीं बना लिया, वल्लाही। आज हम उसमें शुगर का इलाज कुरान में, हालांकि अल्लाह के नबी के दौर में किसी को शुगर होती नहीं थी। मैं हैरान होती हूँ जिस तेजी से वजायफ बन रहे हैं, एक वक्त आएगा कंप्यूटर ठीक कराने का वजीफा, हार्ड ड्राइव खराब ना हो जाए इसका वजीफा, आपकी वेबसाइट डाउन ना हो जाए इसका वजीफा। क्या जुल्म नहीं आज हमारे साथ हो रहा? हरूफ मुकत्तात को घरों के दरवाजों पर बरकत के लिए बनाया जा रहा है, और एक ऐसा वजीफा था कि जिसमें कुरान की आयत थोड़ी सी, फिर उसके आगे हदीस के दो चार लफ्ज थे किसी और हदीस के, फिर उसके आगे किसी और आयत का टुकड़े। भाई ये क्या कहते, बड़ी बरकत होती है इसको पढ़ो। और आपने नहीं सुना कि यासीन को मुबीनों के साथ पढ़ते हैं, जहां लफ्ज मुबीन आए वहां तक पढ़ो, फिर शुरू से पढ़ो तो अगली मुबीन पे रुको। तो क्या अल्लाह को ये कोई खेल लगता है? आपने कितना मरूफ नाम सुना होगा दरू तंजीना का, आपको पता है वो क्या है? अरबी लफ्ज में तंजीना लफ्ज नहीं है, तो ना जीना, तू निजात दे हमको। इसके पीछे कहानी है, कश्ती थी और उस पर 300 कितने लोग बैठे थे, और तूफान आ गया तो फिर जो बुजुर्ग थे उन्होंने बैठकर ये वजीफा पढ़ा और दूसरों ने पढ़ा, तूफान भी चला गया, कश्ती भी बच गई, अब तुम भी पढ़ो दरू तंजीना। लोग वही से ज्यादा इन चीजों को मानते हैं। आंखों की नजर तेज करानी है तो वो वबसरु का यौम अल हदीद, नबी को ख्वाब में देखा तो बस जन्नती बहिश्ती, तवीज घुला के पिला दो तो बस देखना ये हो जाएगा। वल्लाही वल्लाही आज देखिए अल्लाह की इस पे कितनी पकड़ है लोगों के लिए, और ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। मेड इन पाकिस्तान, दीन मेड इन पाकिस्तान एंड इंडिया। और मजे की बात है कि हम पाकिस्तान इंडिया वाले ये चीजें ज्यादा ही करते हैं। हमने आज दीन का क्या वर्जन देखा? आज क्यों नहीं लोग आपके इस कुरान को पढ़ने आते? सच बताएं कि सारे शहर के लोग आ जाएं तो हमें शहर का ऑडिटोरियम लेना पड़े, कितने लोग आते हैं रोते धोते या खुशी के साथ इन क्लासों में और कुरान सीखने में, और आप खत्म करा लें। मारूफ क्या है आज दीन के नाम पे? कुरान खानी, और वो भी आखिरी वक्त पे जाते हैं जब खाना खुलने वाला होगा। 1,25,000 का खत्म, ये सब कुछ युहर्रिफून अल-कलिम। दुनिया में तो कॉपीराइट्स पे पकड़ लेते हैं। एक हमने कोई ऐसी वेबसाइट पे कोई चीज डाली, मुझे याद नहीं कुछ अर्सा पहले की बात है, तो एकदम यूट्यूब पे वो जब डाला इन लोगों ने, इवन हमारी कोई शायद स्कूल की वीडियो थी क्या थी, तो उन्होंने रोक ली, यूट्यूब ने बैन कर दी। मैसेज आ गया क्यों? उन्होंने कहा कि आपकी इसमें कोई कॉपीराइट्स की चीज थी जो आपने डाली है, तो यूट्यूब जो है कोई कॉपीराइट्स वाली चीजें नहीं डालने देता। भाई कहाँ डाली, क्या देखी, सोचा तिलावत का एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी जगह से कोई बिस्मिल्लाह या कुछ डाल डुल के किया होगा, उसकी वजह से यूट्यूब ने वो वीडियो रोक ली कि ये कॉपी राइट्स हैं इसको, फिर वो उधर से निकाल के दूसरे की जो नहीं डाले तो कुछ भी नहीं हुआ। यानी दुनिया में आप देखिए जाली चीजों से हम बचते हैं, नक्कालों से होशियार हैं, तो अपने दीन के मामले में आज कितने लोग हैं जो इस बात पे सोचते हैं। ये बात मैं कहती हूँ अपनी दावतों में, दरसों में, अपने प्यारों के साथ शेयर करने की है कि बताएं जो दीन आप इस वक्त मान रहे हैं वो किधर से बना हुआ है। ये सारी बातें कि जब ऐसी चीजें आम होती हैं ना, तो फिर असल दीन कौन पढ़े? ये कौन आपकी तरह दो दो घंटे की तफसीर सुने? कौन एक एक आयत पे घंटा घंटा लगाए कि नहीं ये नहीं वो नहीं? असल बात यह है कि ये चीजें शॉर्टकट्स हैं, और मेरा आपका ईमान है कि अल्लाह ने जो हमें नबी के जरिए दीन दे दिया वही खूबसूरत है। लिहाजा अब आखिरी आयतें देखिएगा जो इस पे कमेंट है इनके लिए, बला बल्कि यानी ये खुशफहमियों वाली जन्नत चाहते हैं। जन्नत में के बाहर मैंने अपना नाम लिख दिया तो मेरी मर्जी हो गई। वह कालू, अब ये उनकी खुशफहमी है, जो पीछे बात हुई है ना कि इनकी अमानिश, तो उसकी मिसालें दी जा रही हैं। वकालु लन तमस्सना नार इल्ला अय्यामा मादूदा, कहते थे हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद गिनती के दिन। कौन से दिन? यहूद के मुख्तलिफ फिरके जो थे ना वो मुख्तलिफ नाम लेते हैं। कोई कहते थे 40 दिन रहेंगे क्योंकि बछड़े की पूजा 40 दिन की, कोई कहते 7 दिन रहेंगे हफ्ते के हर दिन के बदले। इसी तरह की खुशफहमियां इनकी आज भी इनकी किताबों में मौजूद है। एक मैं आपको कोटेशन पढ़ के सुनाती हूँ जो इन्हीं की अपनी किताबों में, क्यामत के दिन इब्राहिम दोजख के दरवाजे पर तशरीफ रखते होंगे और किसी मख्तून इसराइली को इसमें गिरने नहीं देंगे। ये एवरी मैंस लाइब्रेरी सीरीज है, पेज नंबर 404। जहन्नम की आग इसराइली गुनाहगारों पर कोई कुदरत नहीं रखती, इसी किताब के 405 पे। खुद को लाडले समझते थे, फिर इसी तरह से आतिशे दोजक गुनाहगाराने कौम यहूद को छुएगी भी नहीं, इसलिए कि वो दरे जहन्नुम पर पहुंचते ही अपने गुनाहों का इकरार कर लेंगे और खुदा के पास वापस आ जाएंगे, पेज 583। आज आपको ऐसी किताबों में बहुत सारी बातें मिलेंगी। अल्लाह कहते हैं कुल, इनसे पूछो, अत्तखज़्तु मिन दुल्लाही अहदा, क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा लिया है, कोई अल्लाह ने तुम्हारे साथ डील की हुई है? फलही युखलिफ अल्लाहु अहदहु, अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह तो वाकई अपनी वादे को खिलाफ नहीं करेगा, और अगर ऐसा नहीं और यकीनन ऐसा नहीं, तम तकुलून अलल्लाहि मा ला तालमून, फिर मान लो कि तुम अल्लाह पर वो बातें कहते हो जो तुम खुद भी नहीं जानते। तो मैन मेड दीन कभी अल्लाह के दीन का मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर कौन जाएगा जन्नत में या जहन्नम में? उसका जवाब आयत 81 से 82, बला मन कसब सैयतन, बल्कि जिसने कमाई बुराइयां, वहतत बिही खतीयतहू, और घेर लिया उसको उसकी खताओं ने, फौलाए कसाबुन्नार, यही आग के साथी हैं, हुम फीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। इसके बरक्स वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान ला कर अमल साले करते, वलाइका असहाबुल जन्ना, यही जन्नत के साथी हैं, हुम फीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा रहेंगे। कितना क्लियर है हमारा दीन, बुरे कामों का अंजाम जहन्नम, अच्छे कामों का अंजाम जन्नत। निस्बतों से बात नहीं बनेगी, मसलकों से नाम नहीं बनेगा, खुद को मुसलमान कहने से बात नहीं बनेगी। असल बात है कि अपनी कमाइयों का बदला खाओगे पियोगे। तो आप देखिए पूरे सबक में आपको खुशफहमियां मिली, किस तरीके से लोग अपने आप को खुश रखते हैं ऐसे काम करके। कोई ऐसी चीज जो आपको अल्लाह और उसके रसूल की बात में ना मिले, सोने जैसी भी हो ना, उसको छोड़ दे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस कड़वी भी लगे ना तो ले ले, क्योंकि उसको छोड़कर बच नहीं सकते। तो पूरे सबक को अगर हम समअप करें ना, तो हमने इसमें से अपने लिए क्या लिया कि खताकारी के चक्कर से निकलना है। ये सब खताएं होती हैं जिसमें लोग अपने आप को डालकर फिर परेशान होते हैं, और इसके अंदर हमने ये चीज भी देखी है कि असल दीन खुशफहमियों का नाम नहीं है। तीन जुर्म हमने बड़े बड़े देखे हैं, युहर्रिफून अल किताब, फिर इसी तरह अमानिश देखी, और यक्तुबून अल किताब, और फिर हमने इसमें ये भी चीज देखी है कि मौत के बाद जिंदगी मुमकिन है, मुर्दा जो जिंदा हुआ उससे। फिर हमने संगदिली की मिसालें देखी, पत्थरों में से जिनसे चश्मे फूटते हैं, कुछ पत्थर अल्लाह के खौफ से गिरते हैं, उनसे पानी निकलता है। फिर हमने यहूद का तज्जिया किया, पांच चीजें हमें उनके उलमा की दिखी इस लेसन में। नंबर एक, अल्लाह के कलाम को सुनकर बदल देते हैं, और दो, चेहरे वाले हैं, उम्मीदीन किताब के बारे में आरजुएं रखते हैं, और यक्तुबून अल किताब, अपने हाथों से अल्लाह का कलाम लिखते हैं। और यहूद की गलत फहमी देखी कि हमें दोजख की आग नहीं छुएगी। और आखिर में हमने अल्लाह का फैसला देखा कि जो भी वदी कमाएगा खताकारी के चक्कर में पड़ेगा, और वही जहन्नुम है। करें क्या, दिलों के जंग को दूर करने के लिए अल्लाह के नबी की वसीयतों पर अमल करनी है, आखरत की याद भी रखनी है, और कुरान की तिलावत करनी है। आप भी सोच के आइएगा, मैं भी कुछ चीजें मजीद शेयर करके इंशाल्लाह अगला लेसन आपके साथ शुरू करूंगी। और आप ध्यान से एक जुमला आखिर में लिख लीजिए कि जन्नत ख्वाहिशों से नहीं मिलती, और जन्नत दुआओं से भी नहीं मिलती, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाक की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.